हम जो भागे हैं पाकिस्तान की वजह से भागे हैं, इन्होंने सही काम नहीं किया।
अच्छा
हाँ,
अच्छा,
वो स्केप गोट बनाना ना उनको, किसी को
पहले पाकिस्तान से रशक भगवाया था और पाकिस्तान ने अब हमको भगवा दिया।
हाँ, तो अब इसलिए वो उसको जो है वो करना है ना, उसको उसको नीचे करना। वो गांव का चौधरी बना हुआ है ना, अंकल सैम तो गांव के चौधरी है ना।
हाँ जी।
अब वो जो बेचारा गांव का बेचारा मजेरा पाकिस्तान, उसका तो वो बोलेंगे ना, भाई तू चौधरी के आगे कैसे खड़ा हो रहा है, तुझे तो सर झुकाना पड़ेगा। अब वो मजेरा जो है वो भी जरा पढ़ लग गया है, उसका हेड जो है वो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आके है। वो कहता है मैं नहीं तेरे आगे झुक रहा भाई। उसकी अब इनको बड़ी तकलीफ है।
हाँ जी।
कि भाई इस खान जो है, इस खान की कमर कैसे तोड़ी जाए, इसके खिलाफ कैसे साजिशें की जाएं, इसको कैसे पाकिस्तान से जो है भगाया जाए, इसको कैसे निकाला जाए।
हाँ,
ये है ना असल में बात।
अब,
ये हाँ,
अब ये
हाँ ये है
मामला, यहाँ पर
मामला यहाँ पे आ गया असल में, कि जिस वक्त जो भी खड़ा हो जाएगा इनके अगेंस्ट कि भाई नहीं ये बस बहुत हो गया, दैट्स इट, इनफ इज इनफ, तो वो कहते हैं वो उनका तो हमेशा से फिलॉसफी थी माई वे और द हाईवे, यानी कि सारी जिंदगी ओ डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी। अच्छा, जिस वक्त अपने मकसद से, तो जियाउल हक भी बड़े अच्छे थे, मैं जो थे वो मुशर्रफ साहब भी बड़े अच्छे थे। भाई एक तरफ तो आप कह रहे हैं दुनिया के अंदर डेमोक्रेसी चलनी चाहिए, दूसरी तरफ आप डिक्टेटर्स जो हैं उनको आप साथ दे रहे हैं, फिर उनको आप कह रहे हैं बड़े अच्छे हैं, फिर आप उनकी बड़ी तारीफें कर रहे हैं, फिर पीपल लाइक मुल्ला उमर जो है आप उनको बुला रहे हैं व्हाइट हाउस में और कह रहे हैं जी इनसे ज्यादा तो दुनिया में अजीम लोग कोई नहीं है। फिर अब जब आपको डिफीट हो गई, अब आप कह रहे हैं जी नहीं ये तो सारे जो है ये बड़े नालायक हैं और ये बड़े टेररिस्ट हैं और ये बड़े खराब हैं और ये और वो है। तो असल में तो
हमने समझने में गलती की
हमने, हाँ
है ना, हमने हाँ। समझने में गलती की उनको, ये तो
हिरोशिमा में आपने बॉम्ब मारे, नागासाकी में आपने बॉम्ब मारे, कितने लाख बंदा मार देता मगर आप टेररिस्ट नहीं है। फ्रांस ने जो रवांडा में बंदे मारे लाखों की तादाद से, वो जो है वो टेररिज्म नहीं है। जो इंग्लैंड ने अंडर जो है वो इंपीरियलिज्म जो दुनिया में हाहाकार मचाई, वो बिल्कुल जो है वो टेररिज्म नहीं है। ठीक है जी, रेड इंडियंस को आपने अमरीका में मारा, खत्म कर दी उनकी नस्ल, वो टेररिज्म नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में एबरिजिनल्स की पूरी नस्ल खत्म कर दी, दैट इज नॉट टेररिज्म, राइट। लेकिन जो तालिबान कर रहा है दैट इज टेररिज्म, या जो कुछ कश्मीर में हो रहा है वो सारे टेररिस्ट हैं जो कहिए सब कुछ कर रहे।
कल एक बड़ी अच्छी वो डॉक्यूमेंट्री सीएनएन पे दिखाई जा रही थी रात को
जी।
और उसमें जो ये क्रिएशन ऑफ इसराइल है ना, वो 1946 से लेके उन्होंने दिखाना शुरू किया कि क्या हुआ वो, तो ब्रिटिशर्स वर द वंस हु क्रिएटेड दैट।
हाँ, वो इंस्टिगेट उनको किया ना, उनको उनके जो लीडर्स थे उनको कहा कि दुनिया में अगर कहीं पे भी तुम्हारी जगह बनती है तो वो दैट इज पैलेस्टाइन, क्योंकि वो तुम्हारे होली प्लेसेस हैं वहां पे। दुनिया में अगर तुम कहीं पे भी अपना मुल्क बना सकते हो तो उधर बना सकते हो, और वो बिल्कुल ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह उन्होंने किया, जैसे इंडिया में किया आके कि जी हम तो ट्रेड के लिए आए हैं, फिर वो करते करते वो ट्रेड के चक्कर में पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया, उन्होंने एग्जैक्टली ये किया। पैसे वाले थे जी, उस फलस्तीन में गए जी, जमीनें खरीदी, हम तो तुम्हारा मुल्क को डेवलप कर रहे हैं, उन्होंने बड़े जी ओपन आर्म्स से इनको वेलकम किया। वो करते 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 फिर वो जो है उनको उन्होंने कहा जी नहीं अब तो हमने अपना मुल्क ही अलग बना लिया, एंड इट वॉज देन दैट पैलेस्टीनियन रियलाइज कि हमने किया क्या है। दैट इज वाई बिकॉज ऑफ दैट बैड हिस्ट्री आज भी मिडल ईस्ट में किसी को वो लोग सिटीजनशिप्स नहीं देते हैं, किसी को प्रॉपर्टीज जितनी लोगों के पास है वो सब लीज के ऊपर ली हुई है। नाउ दे हैव स्टार्टेड ओपनिंग अप, और वो भी बहुत जो कोई टॉप कोई जो बिजनेसमैन है मिडल ईस्ट का, उनमें से कोई दो चार जैसे ARY गोल्ड वाले जो हैं, उनको UAE की गवर्नमेंट ने अब UAE की नेशनैलिटी दी है, पीपल लाइक देम। फिर वो जो है मिकी जिटियानी, जिसका 400 स्टोर है मिडल ईस्ट के अंदर, उसको जी इन्होंने दी है, और अब उन्होंने UAE ने कुछ, तो बहरेन ने भी इसी तरह, कतर ने भी इसी तरह, तो इस तरह के लोगों को जिनके को पता है हाँ अलीट के जिनके इंटरेस्ट है ही मिडल ईस्ट में, ये अब इंडिया पाकिस्तान या कहीं और नहीं जाएंगे, तो उनको जी वो देना। आपको पता है कि दुनिया सॉरी मिडल ईस्ट की सबसे बड़ी जो गोल्ड रिफाइनरी है वो ARY वालों ने उधर खोली है, तो जाहिर है वो उस तरह के लोग तो पाकिस्तान नहीं जाके सेटल होंगे ना, इट डजंट मेक एनी सेंस फॉर देम, राइट। या जिस वो जो इंडियन बिजनेसमैन के 400 स्टोर हैं मिडल ईस्ट के अंदर, वो इंडिया में बैठ के कैसे चलाएगा भाई बिजनेस,
सही बात,
उसको उधर ही। तो इस तरह के लोगों को अब दो चार कुछ लोगों को, या के पीपल लाइक सानिया मिर्जा, या के यू नो दीज काइंड ऑफ पीपल, उनको वो कह रहे हैं जी कि हम आपको देने को तैयार हैं तो आप ले सकते हैं और ये और वो, तो बाकी तो नहीं देते इसलिए इस दिस बिकॉज ऑफ दिस बैड हिस्ट्री, कि उनको पता है कि ये जिस वक्त फॉरन, क्योंकि ये छोटे छोटे मुल्क हैं, इनको तो ओवर रन करना कोई मुश्किल नहीं है ना, तो अगर इन्होंने
जमीनें और डॉक्यूमेंट्री का रात को जो उन्होंने बनाई है, वेरी गुड डॉक्यूमेंट्री, सीएनएन पे आई थी रात को, और उसमें उन्होंने सारी हकीकत बताई कि किस तरीके से यहाँ पर इसराइल को बनाया गया और किस तरीके से वहां से लाके 48 में और उसके बाद
बसाया
उनको और पूरा का पूरा किस तरीके से बनाया गया। तो उसमें कई लोग ऐसे भी थे जो उस चीज के खिलाफ थे और कई लोग ऐसे थे जो उसके फेवर में थे, मगर ऑल टुगेदर दे वॉज अ कंट्री क्रिएटेड नेम इसराइल। गुड गुड डॉक्यूमेंट्री कल रात को उस पर आई थी। एनीवे कुछ कहानियां पाली
है? हाँ जी हाँ जी, मीनारे पाकिस्तान पे जो कुछ हुआ आपने देखा है? देखा है ना?
आई ट्राई टू इग्नोर दोस थिंग्स।
हाँ, हमने भी इग्नोर किया, लेकिन उसके ऊपर एक मीम आई है। तो मैं सिर्फ मीम की बात मैं कर रही हूँ,
आप मीम पढ़ लें। हाँ, मगर
हम मीम की बात करेंगे।
ट्राई टू अवॉइड दोस थिंग्स, ये चीज है ना, ये
माजी भाई आपने मेरी बात भी नहीं सुनी है। अच्छा, मेरी बात नहीं है। मीनारे पाकिस्तान पे जो है ना, वहाँ पे हमारी फिरदौस आशिक अवान खड़ी हुई थी।
ओ, ओ, फिर
आप
बताएं,
आपको
आप बताएं,
मैंने आपको कहा ना, मेरी बात सुने, मैं यही तो करी आपको पता है। मीनारे पाकिस्तान
खड़ी थी
फिरदौस आशिक अवान, वहाँ पे खड़ी थी और वो पूरी रात वहाँ पे खड़ी रही। फिर उन्होंने कहा जी मुझे तो किसी ने नहीं छेड़ा,
आओ मुझे छेड़ो।
मैं तो इस वक्त बाकी की बात करी हूँ, आप किधर के किधर चले जाते हैं, आप जो है ना बहुत डिस्ट्रैक्ट मुझे करते हैं। प्लीज आप जो है ना मौजू पे रहा करें, मुद्दे पे रहा करें।
मौजू क्या है?
हाँ, मीनारे पाकिस्तान।
मीनारे पाकिस्तान और कौन खड़ी है?
या फिरदौस आशिक अवान थी,
और उनको किसी ने नहीं छेड़ा,
किसी ने नहीं छेड़ा। समझ आइए आपको, बात पहले पूरी सुना करें।
हाँ जी, बड़ा अफसोस की बात है जी।
अफसोस है ना, बस यही होता है माजिद भाई, ऐसे ही है वो, जैसे
दिस इज जस्ट अ मेकअप, दिस इज नॉट ट्रू। कल आपने हमें पकड़ लेना है, नो दिस इज जस्ट अ जोक,
मीम है ये, सारी जगह सोशल मीडिया के ऊपर है। दिस इज नॉट इवन क्रिएटेड बाय 770, ओके, इट्स नॉट इवन क्रिएटेड बाय अस,
सोशल मीडिया पे
एवरीबडी कैन रीड इट। बस मजे तो इज्जत इज्जत की बात है, देख लें अब जब से कोरोना आया, बाकी किसी अब जो बीमारी की
नहीं छेड़ा उनको, तो ये भी इज्जत की बात है कि वो देखे, वो खड़ी है, उन्होंने कहा इतनी बाइज्जत खातून है, इनको हम कभी हमारी हिम्मत ही नहीं होती कि हम छेड़े।
देख जैसे कि कोरोना देखें, कोरोना की इतनी इज्जत हो गई है कि बाकी सब बीमारियां जो है वो बेइज्जत हो गई हैं।
वो खुद छुप गई है,
उनके बारे में कोई बात नहीं आप कर रहा,
छुप गई है।
हार्ट अटैक, कैंसर, इसके बारे में आप कोई बात नहीं कर रहा, हर कोई बस को देखे कितनी इज्जत मिल गई है कोरोना को।
कोरोना
एवरी बडी स्पीकिंग अबाउट
कोरोना, बड़ी इज्जत वाले हैं। बाइज्जत बीमारी,
बाइज्जत बीमारी है, देख लें आप, इज्जत इज्जत की बात।
वो ये नहीं है कि भाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक वगैरह अमीरों को होता है, ये कोरोना ने कहा नहीं, अमीर गरीब हो, कोई हो, जो भी हो,
एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद भैया, सबको हो गया कोरोना का बीमारी का आगाज। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद भैया, सबको शुरू हो गया इस बीमारी का आगाज है,
देख लो
कोरोना का,
देख लो जी।
बस माजिद भाई ये
हो गया ना,
अब नया शेर ये है,
नया शेर ये है, बस कोरोना छोड़ेगा नहीं किसी को।
नहीं 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 नहीं, हाँ जी, तो मैंने आपको कहा ना, मैंने आपको बड़े ज्ञान देने होते हैं, मेरे पहले ज्ञान गौर से आप सुना।
ठीक है,
आप बीमारी से आए, मैं आपके ऊपर ज्यादा प्रेशराइज नहीं कर रही,
ये बहुत बड़ी गलती हो गई है,
गलती हो गई ना। नेक्स्ट टाइम
पहले कहा था कि आपको पहले बताना चाहिए था कि मैं आशिक अहवान, मोहतरमा आशिक अहवान की बात कर रही हूँ, तो हम फौरन खड़े हो जाते जी।
हाँ बिल्कुल,
आपने देखा ना, जैसे आपने कहा फिरदौस आशिक के बाद मैं खड़ा हो गया।
हाँ बिल्कुल, औरतों की बहुत इज्जत है हमारी,
बहुत इज्जत, मैं सल्यूट कर रहा
हूँ। हाँ जी, अच्छा जी, अच्छा जनाब, कहानी पाई है हम अपने, उसके बाद कार्यक्रम भी हमने शुरू करना है। अच्छा जी, कहानी हमारी ये है कि हमारी वेबसाइट पे जाएं, पीआरई सी वेबसाइट जो है, उसके ऊपर बेशुमार आपको चीजें मिलती हैं, लाइव रेडियो, लाइव टीवी, ब्रेकिंग न्यूज, उर्दू की खबरें, लोकल खबरें अब आपको बहुत सारी नजर आएंगी। उसके बाद जो है नीचे अगर आप जाते जाएंगे तो आपको हेल्थ, मेडिसिन, लाइफ स्टाइल, एंटरटेनमेंट, यूथ जोन की स्टोरियां एज एंड वेन दे कम, और कनेडा की न्यूज, जैसे कि आपको पता ही है कि अब बिगल बच चुका है उसका इलेक्शंस का, तो अब बहुत कुछ हो रहा है। हमारे ब्रैमटन के जो थे वीकेंड के ऊपर एमपीज जो थे पांच, वो बहुत ज्यादा एक्टिव हुए हुए थे, तो उनकी स्टोरीज आपको नजर आएंगी कनाडा न्यूज में, स्पोर्ट्स न्यूज में, और राइट साइड पे आपको नजर आएंगे हमारे एडवर्टाइजर, तो प्लीज आप इनको जो है सपोर्ट करें। अच्छा जी, पहला जो है वो हमेशा हम आपको बताते हैं नायाब रेस्टोरेंट, बड़े जबरदस्त खाने होते हैं और नाश्ता तो वाजिबा क्या बात है। मैं और माजिद भाई तो हम तो कम खाते हैं तो हमारा नाश्ता सस्ता आ जाता है। आमिर बेताशा खाता है, उसका जरा महंगा आता है। तो अगर आप हाँ हाँ बिल्कुल, तो अगर आपको आप मेरे और माजिद भाई की तरह खाते हैं तो बिल्कुल थोड़े से पैसों में आपको बहुत जबरदस्त आप नाश्ता कर सकते हैं नायाब रेस्टोरेंट में। तो इनका नंबर है 9056768860, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको अपने सपनों का घर चाहिए तो आप जस्टिन जेम्स जी से बात करें, जो हमेशा आपको कहते हैं आपको कॉन्डो चाहिए, आपको डिटैच होम चाहिए, सेमी डिटैच होम चाहिए, जैसा भी चाहिए आपको, आप इनको कॉल कर सकते हैं 6476886931। एंड जनाब सिंपली के बारे में हम आपको थोड़े दिनों से बता रहे हैं, सिंपली फाइनेंशियल। अगर आप किसी इंटरनेशनल स्टूडेंट को जानते हैं तो आप इनको सिंपली फाइनेंशियल के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि ये जो है डिजिटल बैंकिंग की सेवा देते हैं और अगर आप उनको रेफर करेंगे तो आपको भी $50 मिलेंगे। तो आप ज्यादा इनके लिए इन्फॉर्मेशन के लिए आप इनको विजिट कर सकते हैं ऑन www.simply.com/isbo, दैट इज www.simply.com/isbo। और इसके अलावा अगर आप जानते हैं कोई आ रहे हैं न्यू कमर्स यहां पे, तो उनको भी आप सिंपली फाइनेंशियल के बारे में बता सकते हैं और उनको कहें जी आने से पहले ही आप अपना जो है खोल सकते हैं अकाउंट यहां पे। और अकाउंट आप जब खोलेंगे तो आपको ना सिर्फ ये कि डिजिटल बैंकिंग की हेल्प मिलेगी, बल्कि आपको जो क्रेडिट कार्ड जो है वो दिया जाएगा, 10,000 उसकी लिमिट है डॉलर्स की, और $200 आपको बोनस दिए जाएंगे और जो रेफर करेगा उसको $50 मिलेंगे। तो इनको विजिट करें प्लीज www.simply.com/newtocanada या के www.simply.com/newtocanada।
रात की रानी किसको दी चाहिए भाई? रात की रानी
मुझे तो सुबह की भी चाहिए जो आके मेरे घर में काम जम कर।
अच्छा, पता क्या है, एक पाकिस्तान में होता था दिन का राजा।
अच्छा रेली कैसा था?
ऑनेस्टली
काले रंग का
नहीं, एक वहां पर पाकिस्तान में एक फूल है जिसको दिन का राजा कहते हैं, वो दिन में जो है वो
चमक रहा होता है,
खुशबुएं देता है।
अच्छा,
और फिर रात की रानी उसके बराबर में लगी होती है, तो रात की रानी जो है वो रात में खुशबू,
यानी लड़कियां हर गलत काम में इन्वॉल्व हैं। देखे दिन में नहीं इन्होंने खुशबू देनी, इन्होंने रात में देनी।
हाँ, रात को खुशबू देती है, दिन में तो इधर उधर की बातें करनी। तो रात की रानी चाहिए और बड़ी अच्छी अच्छी रानियां चाहिए आपको।
अच्छा,
तो भाई मैं सारे भाइयों से कहता हूँ कि आप कैलेडन सब्जी फार्म पहुंचो।
ओए होए, क्या एंटीक लाइफ में आपने बात दिल तोड़ छड़िया।
आप
क्लेटन सब्जी फार्म पे ही जाना है हमने। हाँ, रात की रानी
लेने के लिए
आए आए।
बड़ी बहुत उन्होंने कहा है कि हम पास रात की बहुत रानी है,
बहुत रानी है।
हाँ, तो आप आ जाओ वहाँ पर और बड़ी तंदुरुस्त है।
हाँ, कोरोना तो नहीं हुआ इनको?
नहीं, कोरोना नहीं हुआ इनको, बड़ी तंदुरुस्त है। तो वो आप रात की रानी लेने के लिए पहुंचे कैलेट में सब्जी फार्म में। उसके अलावा और भी दूसरे छोटे मोटे फूल है वहाँ पर, आप वो भी ले सकते हैं।
कद्दू टिंडे भी हैं
और फल फ्रूट भी है। तो आप ये सारी चीजों के लिए आप कहां जाना है आपने? कैलेडन सब्जी फार्म, फार्मर्स मार्केट, 12050 एयरपोर्ट रोड, छठो एड्रेस में यार, एयरपोर्ट रोड पे सीधा जाइए, मेफील्ड को क्रॉस कीजिए, आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए, आप
बड़ा सारा लिखा हुआ नजर आएगा,
बहुत बड़ा सा नजर आएगा,
बड़ा सा।
हाँ, और फिर आपको आपको जाना है कैलेडन सब्जी फार्म पे, जाइए वहां पर, रात की रानी रहिए और देखिए अपने घर में कितनी खुशबुएं होंगी, है ना। अपनी बेगम को कहिए मैं एक रात की रानी लेने जा रहा हूँ। अगर आपकी टांगे सलामत रही तो आप जाके ले सकते हैं, अगर टांगे सलामत ना रही तो आप नहीं ला सकते,
तो फिर आपको उनकी सब्जियां खिला खिला के कद्दू बना दिया जाएगा। कद्दू बना दिया
जाएगा। चलिए आप इससे पहले कि हमारी सीट बाहर निकल आए। जी साहब, बहुत सीरियस काम है, बहुत सीरियस, नो मोर हंसी, दैट्स इट, हंसी का टाइम खत्म हो गया, इसीलिए मैंने म्यूजिक चला दिया जी। अब कोई हंसी नहीं गए, अब सीरियस टॉक एंड सीरियस टॉक के लिए मेरे साथ हैं शाजियाब मलिक जी।
अजय जी, माजिद भाई आपको पता ही है कि अब काफी यहाँ पे कनाडा में भी स्यापे पड़े हुए हैं अफगानिस्तान की वजह से भी, कि भाई बंदे निकालो, इंटरप्रेटर्स को निकालो, उनकी फैमिलीज को निकालो, ट्रांसलेटर्स को निकालो। तो ये जी, ये जो है ग्लोबल अफेयर्स कनाडा, उसने कहा है जी कि हमने वीकेंड के ऊपर भेजे थे C-17 ग्लोब मास्टर करियर, जो कि संडे को 436 बंदे लेकर आया है और सैटरडे को इससे पहले 121 बंदे लेकर आया था। अच्छा, तो ये जो हरजीत सज्जन साहब हैं, इन्होंने कहा है जी कि हम, ये ना आप समझें कि गवर्नमेंट गाफिल, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं ना, तो बहुत सारी जगहों से वो अब क्रिटिसिज्म आ रहा है कि जी ये टूडो साहब ने तो काम ही नहीं किया, हम तो इनको, खासतौर पर एरन ओटूल साहब ने इनको कहा जी, हम तो इनको महीनों से कह रहे थे, 5 महीने से कह रहे थे निकालो इनको, ये हमारी बात ही सुन रहे थे। इन्होंने कहा जी हरजीत सज्जन साहब ने कि हम कॉन्स्टेंटली इसके ऊपर काम कर रहे हैं, हम कॉन्स्टेंटली इसके ऊपर निकाल रहे हैं लोगों को वहां से, एज लॉन्ग एज हमको उधर काम करने दिया जाएगा हम काम करते रहेंगे, जितने लोगों को हम निकाल सकेंगे हम निकाल के लेकर आएंगे, तो आप उसकी जो है वो परवाह ना करें।
मगर उसके साथ साथ जो हमारे स्पेशल फोर्सेज है, जो दे आर नॉट ऑर्डिनरी सोल्जर्स, दे आर स्पेशल फोर्सेज जो पहुंची है, आज जनाब हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने ये भी कहा कि भाई मैं आपको इसकी डिटेल नहीं दे सकता,
नहीं दे सकते जी,
है ना, मगर वो नॉट ओनली एट द एयरपोर्ट से बाहर भी निकल के वो कैनेडियंस को और उनके हेल्पर्स को लेके आए हैं एयरपोर्ट पे और वहां से उन्होंने फ्लाई करवाया।
वो कह रहे हैं जी दे आर ऑपरेटिंग इवन आउटसाइड काबुल एज वेल,
यस,
तो वहां पे भी वो कर रहे हैं, तो आप उसकी फिक्र ना करें, हम काम कर रहे हैं। लेकिन अब जो ट्रूडो साहब है ना माजिद भाई, ट्रूडो साहब ने कहा जी कि जो इंग्लैंड है असल में G7 की मीटिंग करा रहा है ये क्राइसिस के ऊपर बात करने के लिए, ठीक है जी। अब ट्रूडो साहब कह रहे हैं जी मैं तो उधर जा रहा हूं, और वो कह रहे हैं कि मैं वहां पे लोगों को जोर दूंगा कि ये तालिबान जो है इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आप करार दें और इसकी गवर्नमेंट को आप ना माने। देखिए ना, आप जो है कैसे जोर दे सकते हैं किसी को, आपको पता है, आपने स्टडी करने, यानी जो आपके इर्द गिर्द दो चार लोग हैं जिनको दो चार ही बातें पता हैं, इलाके के बारे में कुछ पता ही नहीं है, वो आपको एक पुट्ठी मत दे रहे हैं, आप वही बात करें। अब आप देखें सऊदी को विदाउट एनी रीजन और बगैर जाने हुए कि उस लड़की रहाफ अल-तावील की हिस्ट्री क्या है, वो कौन है, ये लोग कौन है, ये क्या क्या कुछ करते हैं, राइट, उसके पीछे आपने सऊदी गवर्नमेंट को अपना दुश्मन बना लिया, मेंगवान जाओ के पीछे आपने चाइना को अपना दुश्मन बना लिया है, आपने जो है यूएसए के साथ जो है प्रॉपरली डील ना करने की वजह से उसके साथ आप ये नहीं कह सकते कि बड़े हनी डोवी हमारे जो है वो डोरी रिश्ते हैं हमारे, यूएसए ने कोई इतना प्यार नहीं आपको दिखा रहा, अपनी वो मर्जी। अब आप जो हैं इनको भी अपना दुश्मन बनाना चाहते हैं, आपको क्या लगता है कि ये फिर आपको छोड़ेंगे फिर ये?
मुझे ये लगता है कि लिबरल का एड जो है तो वो नहीं आएगा अब।
नहीं आएगा माजिद भाई
लिबरल का हमारा नुकसान हो गया आपकी इस स्पीच के बाद हमारा लिबरल का एड बंद हो गया।
नहीं आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो जो वो है वो कह रहे हैं जी कि ये, अब मैं जाके उधर बोलूंगा जी कि इनको टेररिस्ट आप ऑर्गेनाइजेशन बोले, भाई आप क्यों बोलेंगे इस तरह, आप क्यों? वो कहते हैं मैं पूरी कोशिश करूंगा, भाई क्यों आप पूरी कोशिश करेंगे? आप बोलें कि हम
समझने की कोशिश करनी चाहिए,
करनी चाहिए कि भाई ग्राउंड रियलिटीज क्या है, ग्राउंड रियलिटीज क्या है उनको आप समझें, और आपको आप पूछें जरा जो इलाके में लोग बैठे हैं, आप जरा तकलीफ कर लें, इमरान खान साहब को एक फोन कर लें, चलें, आपके जो एडवाइजर है बहुत स्मार्ट है माशाल्लाह, जो आपको सही एडवाइस नहीं दे रहे, इमरान खान साहब को एक, हाउ डिफिकल्ट इज टू कॉल इमरान खान, राइट, आप एक कॉल कर लें, वो आपको सारी की सारी कहानी सुना देगा कि भाई ये कौन तालिबान है, ये कौन लोग हैं, हमारी इनके साथ क्या बात चल रही है, ग्राउंड रियलिटीज क्या है, शायद यू विल गेट अ बेटर सेंस, यू नो, यू विल गेट अ बेटर सेंस। तो बहरहाल जी ये उन्होंने बात की है, विच इज नॉट रियली अ वेरी गुड साइन। नैनोज रिसर्च की एक रिसर्च आई है और वो इसके मुताबिक जी लिबरल्स और कंजर्वेटिव जो है नेक टू नेक चल रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि लिबरल जीतेगी, इन्होंने बहुत बड़ा गैम्बल कर लिया है, मुझे लग रहा है, मुझे आई हैव अ वेरी बैड फीलिंग, मुझे लगता है कंजर्वेटिव जीत जाएंगे, मुझे लगता है
क्योंकि इलेक्शंस में तो ये है कि एक रॉन्ग मूव या एक 24 आवर्स में पोल्स कहीं से कहीं चले आते हैं।
वो याद है ना आपको टॉम मल्केयर का एक कमेंट जो था, उसने उनके लिए टेबल्स टर्न कर दिए,
एग्जैक्टली,
राइट, आगे टूडो साहब ऊपर आ गए।
इट कुड हैपन बट द ओनली थिंग इज दैट राइट नाउ अभी भी लिबरल्स को लीड है।
लेकिन आप देखें नैनोज रिसर्च का जो आज आया पोल, इसके मुताबिक 32.5% लिबरल्स को है और 31.5% 2.4% कंजर्वेटिव्स के पास है, जो ये वो कहते हैं जी ये हमने जो किया था अभी जो हमारे रिजल्ट्स तो आ जाए हैं, हमने ये पोल कंडक्ट किया था 15 अगस्त के पास, वो कहते हैं इससे दो तीन दिन पहले 12 अगस्त को जब हमने ये किया था तो लिबरल्स वर एट 33.4% एंड कंजर्वेटिव्स वर एट 28.4%।
मगर अब, तो अब ये देखें ना, अब ये देखें ना कि जो अब अगर उसका देखें आप द मेन स्ट्रीम रिसर्च, द मेन स्ट्रीम रिसर्च का जो पोल आया है वो भी इसी दिनों में किया गया है, तो उसके लिहाज से लिबरल 43% डिसाइडेड वोटर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट जीटीए, जीटीए में 43% डिसाइडेड वोटर्स, कंजर्वेटिव 29% एंड एनडीपी इज 20%, विच इज इन जीटीए, और जीटीए इज अ स्ट्रांग होल्ड, जो जीटीए को जीतता है या जो 905 को जीतता है वो यू नो दैट मेक्स अ गवर्नमेंट, ओके। और पीपल्स पार्टी एंड ग्रीन पार्टी जो है वो 3% पे है। अगर आप यॉर्क में देखें तो यॉर्क टोरंटो में यॉर्क जीटीए के टोरंटो का हिस्सा जो है वहां पर 49.9% वोटर्स की सपोर्ट है लिबरल्स को, यॉर्क में 49% की सपोर्ट है, कंजर्वेटिव को डफरिन सिमको में 48.2% की सपोर्ट है, और डरम में 39.6 जो इनका अपना इलाका है, एनडीपी को हैमिल्टन में 25% है विच इज सेकंड टू लिबरल, एंड पील में लिबरल को 41.9 की सपोर्ट है एंड कंजर्वेटिव को 34.5। मगर दीज जो ये जो पोल्स डोंट विन एनी इलेक्शन, आइडिया
ट्रैकर है,
मगर ये कि ये चीजें ना ओवर नाइट बदल सकती है, ऐसे वन रॉन्ग मूव, वन रॉन्ग आपने मुंह से आपके कुछ निकला एंड दैट इज इट।
वो देखें जैसे ही रोया उधर ट्रूडो उस पर डिबेट पे, जैसे ही आंखों में आंसू है, आप देखें सारे टर्न टेबल्स बिल्कुल सब कुछ चेंज, तो हो तो सकता है माजिद भाई, लेकिन बहरहाल एनीवेज। अच्छा जी, ट्रूडो साहब ने आज
बिग गैम्बल
बहुत इन्होंने बड़ा गैम्बल। अच्छा जी, आज ट्रूडो साहब ने कहा कि मैं $3 बिलियन जो है 4 ईयर्स में खर्च करूंगा, और ये वैसे बड़ी समझदार मूव है क्योंकि हमको वाकई डॉक्टर्स चाहिए, हमको चाहिए डॉक्टर्स। वो कह रहे हैं जी हम फिजिशियंस के ऊपर करेंगे क्योंकि प्राइमरी केयर जो है वो बहुत ज्यादा सफर करती है, बहुत ज्यादा सफर करती है, उसका सारा वो फॉल आउट आता जाता है। और वो कहते हैं जी 7500 हम डॉक्टर्स जो है बाय 2022 एंड ऑनवर्ड्स हम जो है वो हायर करेंगे। अच्छा, ये जो थी यहां पे जो कैनेडा की मेडिकल एसोसिएशन थी, उसने कहा कि 5 मिलियन कैनेडियंस जो हैं उनके पास कोई प्राइमरी हेल्थ केयर फिजिशियन नहीं है, नहीं है 5 मिलियन। तो इसलिए आज की इनकी ये जो इन्वेस्टमेंट है ये काफी बड़ी समझी जा रही है, और उन्होंने कहा है कि और भी हम उन लोगों को टैक्स में रिबेट्स और चीजें और देंगे जो कि बाहर के उसमें जाके ना इलाकों के अंदर अपने जो है वो बिजनेसेस खोलेंगे। और उन्होंने कहा जी कि मैं इसके अलावा $6 बिलियन जो है इसलिए दूंगा जो इमरजेंसीज हैं हॉस्पिटल्स के, ताकि ये जो वेट टाइम्स हैं इनको कम किया जा सके। तो ये तो क्योंकि ये तो मुद्दा सबका मुद्दा है, ये तो एनडीपी का भी है और बाकियों का भी है। तो इस तरह एलन टूल साहब जो थे वीकेंड के ऊपर जनाब वो बात कर रहे थे, ये जो कंजम्पशन साइट्स हैं जहां पे के लोग जाके अपने ड्रग्स ले सकते हैं अंडर सुपरविजन, उसकी ये बात कर रहे थे। और इन्होंने कहा कि ये जो है नेशनल एक प्रोग्राम हम चलाएंगे क्योंकि हम रिकग्नाइज करना चाहते हैं ये जो हार्म क्रिएट करती है, तो उसको हम करेंगे, उसके ऊपर हम काम करेंगे। और आज वो ओटावा में थे तो उन्होंने कहा कि जी हम जो रेगुलेटेड वर्क प्लेसेस हैं उनको हम चाहते हैं कि 100 मिलियन जो है ईयरली रेवेन्यूज वो अर्न करें, क्योंकि उनके लिए चाहिए फेडरली रेगुलेटेड जो हैं, और ये जो हैं 1000 के करीब लोग जो हैं ये एम्प्लॉय कर सकते हैं, और ये जो रिप्रेजेंटेशन जो इनकी होंगी थ्रू इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है, तो हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो कॉरपोरेशंस हैं ये मेजर्स को प्रॉपरली अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि ऑयल एंड गैस सेक्टर में बहुत ज्यादा सब्सिडीज दी जाती है, तो ये सब्सिडीज जो है ये इनको भी हमको देखने की जरूरत है, और हम चाहते हैं कि ये जो सेक्टर्स हैं डिफरेंट ये फ्लरिश करें और इन द राइट डायरेक्शन जो है वो चलें। जगमीत सिंह साहब जो हैं जी, उन्होंने भी आपको पता ही है कि वीकेंड के ऊपर वो 10th एनिवर्सरी थी जैक लेटन साहब की, तो उसके ऊपर वो बात कर रहे थे, और वहां पे वो कह रहे थे कि जी ये टाइम नहीं था इलेक्शंस लाने का, और ये बड़ा और ऑल द मोर रीजन क्योंकि उन्होंने कहा जी कि अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहा है, लेकिन जाहिर है कि उन्होंने तो एतराज ही करना है। उन्होंने कहा लेकिन ट्रूडो साहब हमेशा अपने बारे में सोचते हैं। तो वो मॉन्ट्रियल के अंदर उन्होंने आज बात करते हुए इन्होंने भी यही बात की है कि ये जो ऑयल एंड गैस के ऊपर हम बहुत ज्यादा स्पेंड कर देते हैं, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ने बताया था कि 1.9 बिलियन का हमने डायरेक्ट एड दिया था इस सेक्टर को लास्ट ईयर, तो ये चीजें जो हैं डेंट करती हैं फिर ओवरऑल और इकोनॉमी को और टैक्सेस को आम लोगों पर बढ़ाती हैं। तो वो कहते हैं कि मैं इसके ऊपर जो है ज्यादा खुश नहीं हूं, मैं इसको रिप्लेस करूंगा, मैं नहीं चाहता हूं कि ये जो है सब्सिडीज दी जाए। और उन्होंने कहा जी कि ये जो चीजें अब बहुत ऊपर चली गई, यानी लास्ट ईयर 1.9 बिलियन जो दिया गया है तो ये दिस इज अप फ्रॉम जो 2019 में दिया गया था, दैट इज 600 मिलियन। तो वो कहते हैं ये तो कॉस्ट अब ऊपर ही चलती जाएंगी फिर इस सेक्टर की, तो हमको सब्सिडीज देने की जरूरत नहीं है, हमको दूसरे कोई तरीके जो है इसके ऊपर देखने चाहिए। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ओपिनियन पीस लिखा है थॉमस मल्केर ने, और जाहिर है कि वो अब थोड़ा सा बायस तो आपको उसमें नजर आएगा ही, लेकिन वो कहते हैं जी कि सारी पार्टीज जो हैं उन्होंने अपना प्लान ऑफ एक्शन जो है अनाउंस कर दिया है सवाए लिबरल पार्टी के। तो वो कहते हैं जी कि एक लीक हो गई एक छोटी सी बात, और वो ये है उसमें ट्रूडो साहब जो अपनी टीम को कह रहे हैं कि भाई तुम लोगों के पास कोई वाओ आइडियाज हैं, कोई वाओ आइडियाज हैं, वो वाओ आइडियाज बताओ जो अब हम इस इलेक्शंस में कर सकते हैं। वो कहते हैं जी वाओ आइडियाज क्या हैं, आपने चूज किया है तो आपको ही अब लीड करना पड़ेगा, और अभी तक तो आपने अपना प्लेटफॉर्म तक अनाउंस नहीं किया है। तो वो कहते हैं जी कि मुझे लग रहा है कि ये जो बेचारा बहुत टॉर्टाइज की उसके ऊपर स्पेस पे चल रहा था ना एरन ओटूल, अब ही हैज स्टार्टेड शोइंग साइंस एंड ही इज शाइनिंग नाउ कंपेयर टू ट्रूडो, उसकी अब लोग बात ज्यादा सुन रहे हैं। और जगमीत सिंह के बारे में कहा कि ही इज ऑल्सो डूइंग वेरी वेरी वेल, उसकी जो रीच है तकरीबन 20% का जो उसका बेस है उसको उसने मेंटेन किया हुआ है, लेकिन अब इलेक्शन के पास जाते जाते ये इसको कितना मेंटेन कर सकेंगे के नहीं कर सकेंगे ये बड़ा क्वेश्चन होएगा। और इन्होंने कहा जी कि एरन ओटूल साहब जो हैं उनको भी अब चाहिए कि जरा थोड़े एग्रेसिव दिखाएं, क्योंकि वो कहते हैं मुझे पता है कि ट्रूडो साहब ने इलेक्शन के पास जाके क्या बात करनी है, उन्होंने वही बात करनी है कि एनडीपी को कहना है कि भाई वोट स्प्लिट ना करो, वोट स्प्लिट ना करो, क्योंकि और अब कोई मुद्दा रह नहीं गया ट्रूडो साहब के पास, तो जीतने के लिए वो ये नारा लगा सकते हैं। तो जरा इनको जो है एरन ओटूल साहब को जरा और थोड़ा सा तेज चलने की अब जरूरत है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग आज का जो है ओपिनियन पीस है, और ये जो इसमें काफी और भी उन्होंने बातें की हैं। आज फिर से एक अफसोस का वाकया हुआ है जी, स्कारब्रो की जो मॉस्क है बैतुल जन्ना इस्लामिक सेंटर किंगस्टन रोड और ब्रिमली रोड के ऊपर, एक दफा फिर उसको आज वेंडलाइज किया गया है, और नाउजबिला कुरान की जो कॉपीज थी उनको फाड़ा और फेंका गया, और भी जो चीजें वगैरह हैं वो भी वहां पे तोड़ी गई हैं। तो वहां पे जो उनके प्रेसिडेंट हैं सेंटर के अतीकुर रहमान साहब, उन्होंने कहा जी कि ये बड़ा अफसोस का वाकया है, क्योंकि वहां पे जो सर्वेलेंस कैमरास वगैरह लगे हुए थे वो भी तोड़े गए हैं और वीडियो रिकॉर्डर्स तोड़े गए हैं। तो ये जो मस्जिद है इसके ऊपर खास कुछ लोगों की नजर है, क्योंकि आपको पता है कि ये गाहे बगाहे इस मस्जिद के ऊपर अटैक्स होते ही रहते हैं, पहले भी हुआ था 2018 में भी उससे पहले हुआ था और अब फिर ये हुआ। तो अब वो कह रहे हैं बड़ा सैड है और हमारी कम्युनिटी में इस तरह का नहीं होना चाहिए, तो पुलिस जो है उसने पूरी इन्वेस्टिगेशन इसके ऊपर बिठाई है टोरंटो पुलिस ने, तो वो कह रहे हैं जी हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। एसोसिएटेड प्रेस की आज एक न्यूज है, और ये अगेन जो है मिडल ईस्टर्न रीजन के अंदर काफी जो है वो बन सकती है टेंशन का बायस, क्योंकि आज इजिप्ट ने जो अपनी गाजा स्ट्रिप के साथ बॉर्डर क्रॉसिंग है वो बंद कर दी है। अच्छा, उसका वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इजिप्ट बहुत अरसे से कह रहा है हमास को भी और इसराइल को भी, कभी तुम लोग बैठो हम तुम्हारे साथ, इनडायरेक्ट वैसे तो टॉक्स में ये लोग इन्वॉल्व हैं, लेकिन ये दोनों साइडों को कहते हैं कि तुम लोग बैठो और रीजन के अंदर जो तुम लोगों ने इतनी लड़ाई बनाई हुई है उस लड़ाई को खत्म करने की जरूरत है, और कायरो जो है वो ब्रोकर आपके बीच में सीज फायर करने की जो डील है उसको करा सकता है, ब्रोकर करा सकता है, लेकिन आपको बैठने की जरूरत है। तो ये दोनों ही नहीं बैठते हैं, हमास भी अटैक्स करता है और जो है इसराइल भी अटैक्स करता है। तो आज उन्होंने कहा जी कि हमारी अपनी क्रॉसिंग जो है ये रफा की जो है इसके ऊपर बहुत ज्यादा ये मचमच हो गई है, यानी कि तो अब हम इसको एटलीस्ट जो है वो करेंगे कुछ अरसे के लिए बंद और देखेंगे कि अब हमको कब इसको खोलना है। आज जनाब कुछ जो फॉरेन मीडिया अदारे थे कुछ उसके अंदर आज टोनी ब्लेयर साहब का जो फॉर्मर यूके के प्राइम मिनिस्टर थे उनका एक इंटरव्यू आया है, कुछ सेक्शंस ऑफ प्रेस ने इसको छोटे छोटे उसमें किया है कैरी, इन्होंने जनाब जो है यूएसए को बड़ा आज क्रिटिसाइज किया है। हालांकि आपको पता है कि ये सारा वक्त जिस वक्त यूएसए अफगानिस्तान में जा रहा था, इराक में जा रहा था, ये सारा वक्त खड़े रहे, बड़ा इन्होंने इनको दुनिया ने क्रिटिसाइज किया कि भाई तुम उसकी जो है मेड क्यों बनते जा रहे हो, हाँ यूएसए की मेड क्यों बनते जा रहे हो, जो मास्टर कहता जा रहा है तुम हाँ 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 करते जा रहे हो, तो ना करो। आज लेकर इन्होंने बड़ा क्रिटिसाइज किया और इन्होंने कहा है कि हमने बड़ी सेक्रीफाइसेस की थी, हम जब अफगानिस्तान में गए थे तो इतनी जल्दी यूएस को वहां से निकालना नहीं चाहिए था, जो कुछ हमने गेन किया था उस सब का जो है वो बेड़ा गर्क हो जाएगा क्योंकि अब वहां पे अच्छा। अब इनका मुझे समझ नहीं आती कि टोनी ब्लेयर साहब भी माशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन इनको क्या समझ में आता है कि वर्ड जिहाद का क्या मतलब है? क्योंकि देखे ना, आम तो अगर जाहिल आदमी जिहादिस्ट वर्ड यूज करे ना तो हम कह सकते हैं कि ये तो भाई जाहिल आदमी है, इसको पता नहीं है। प्राइम मिनिस्टर रहा हुआ है जो आदमी, वो कह रहे जी जिहादिस्ट ग्रुप्स जो हैं वो ये जमा हो जाएंगे यहां पे रशिया, चाइना और ईरान के अंदर, तो वो तो बड़े ये चीरिंग कर रहे होंगे वहां के अंदर। जिहादिस्ट, आपको पता भी है जिहाद क्या है और किन किन सूरतों में वो उसकी इजाजत है और उसकी उसकी टाइप्स क्या है जिहाद की? तो वो अगर आपको नहीं पता है तो आप एक जो टेररिस्ट है उसको आप जिहादिस्ट नहीं कह सकते। जिहादिस्ट तो वो भी आदमी है कि जो जिसका के दिल मचल गया कोई गलत काम करने के लिए, लेकिन उसने अल्लाह और रसूल के डर से अपने आप को रोक लिया, उसने भी जिहाद किया, राइट?
अपने नफ्स का जिहाद,
जिहाद हाँ,
बिगर जिहाद,
बिगर जिहाद। तो आपको मतलब पता है जिहाद का? तो आप कह रहे हैं जी ये सारे लोग अब जिहादिस्ट जमा हो जाएंगे और बड़ी टेररिज्म आएगी और ये सारे मुल्क जो हैं ये इसका एडवांटेज लेंगे और ये और वो। बहरहाल जी, उन्होंने और भी बड़ी बातें की हैं। उन्होंने कहा जी कि ये जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है इसका ये बिल्कुल ठीक नहीं था डिसीजन जो था, और ये जो कैंपेन चल रही थी, उन्होंने कहा जी कि असल में ये अंडर प्रेशर आ गए हैं बाइडन साहब, क्योंकि ये कैंपेन चल रही थी एंडिंग फॉर एवर वॉर्स। और वो कहते हैं कि बाइडन साहब जिस वक्त अपने इलेक्शन ट्रेल पे थे तो वो कॉन्स्टेंटली कह रहे थे एंडिंग फॉर एवर वॉर्स, एंडिंग फॉर एवर वॉर्स। इन्होंने ये प्रॉमिस किया था अमेरिकन उसको, इसलिए अपना ये प्रॉमिस खाली फॉलो करने के लिए ये इतना बड़ा इन्होंने स्टेप लिया, विच इज रॉन्ग, विच इज अ मिस्टेक, ही शुड नॉट हैव डन दिस, ही शुड नॉट हैव। इनको अपने ट्रूप्स जो है अभी वहां पर कुछ रखने चाहिए थे। तो भारत बहुत क्रिटिसाइज आज उन्होंने किया, तो अब देखें इसके जो है क्या रिएक्शन आएंगे। टेनेसी के अंदर आपको पता ही, अगर आप वीकेंड पे देख रहे थे तो टेनेसी के अंदर बहुत ज्यादा मजा था, वहां पे हैवी रेन्स आई हैं और उन हैवी रेन्स की वजह से बहुत वहां पे जो है घर वर गिरे हैं, तो जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी है और डेब्री के नीचे से लोगों को जो है फाइंड आउट किया जा रहा है। 22 लोगों की ऑलरेडी डेथ हो गई है और पुलिस का
लॉट ऑफ मिसिंग,
लॉट ऑफ मिसिंग, हाँ जी, डजन्स ऑफ पीपल आर मिसिंग। तो वो कह रहे हैं जी उनको हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ लोगों को जो है इमरजेंसी से सेंटर्स जो हैं उनमें भी पहुंचाया गया है। बहरहाल काफी वहां पे बुरी हालत है। खुशी की खबर एक ये है, या तो इस फार्मास्यूटिकल के लिए हो सकती है या मजद भाई जैसे बंदे के लिए जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। एफडीए ने जी आज फॉर्मली फाइजर बायोनटेक जो है उसको फुली अप्रूव कर लिया है।
yes.
अब ये जो पहले ये सारी दवाइयां तो इमरजेंसी यूज के लिए की थी ना इन्होंने अप्रूव, अब ये इट इज नो मोर पार्ट ऑफ द इमरजेंसी ब्लॉक, नाउ इट हैज बीन फुली अप्रूव्ड बाय एफडीए यूएसए का। तो वो कहते हैं जी कि अब हम इसको जो है उनकी जो एफडीए की जो कमिश्नर थी जेनेट वुडरॉक, उन्होंने कहा कि अब अमेरिका में लोगों का कॉन्फिडेंस होना चाहिए और अब उनको ये नहीं कहना चाहिए
कि ये दूसरी इमरजेंसी का। हाँ, दूसरी चीज क्या है कि बहुत सारे जो जहां पर लॉ पास कर रहे हैं ना कि भाई यू हैव मैंडेटोरी यू हैव टू हैव इट, तो उनका ये पूरे जितने भी जो सूबे हैं अमेरिका के
जी,
तो वो ये कहते थे कि भाई जो स्टेट्स हैं वो ये कहते थे कि भाई इट इज नॉट टोटली अप्रूव्ड या तो ये तो इमरजेंसी के लिए
इसीलिए वैक्सीन हेजिटेंसी थी।
एग्जैक्टली, तो नाउ दे कैन गो अहेड एंड लीगली दे कैन से इट इज मैंडेटोरी।
तो वो यही वो कह रही हैं इन्होंने जो आज कहा है एफडीए की कमिश्नर जेनेट वुड कॉक ने, उन्होंने कहा है कि अब जो आपकी वैक्सीन हेजिटेंसी है इसका कोई मकसद बनता नहीं है।
exactly.
क्योंकि अब जो है इसकी एफिशिएंसी और सारा कुछ देखा जा चुका है, तो अब आपको इसके पास जाने की जरूरत है क्योंकि वैसे भी जो है मुल्क में डेल्टा वायरस बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है।
yeah.
तो उसके अगेंस्ट जो है आपको करना पड़ेगा। अच्छा जी, वॉशिंगटन पोस्ट की आज बड़ी जबरदस्त रिपोर्ट थी और उसके अंदर यह कहा गया काफी जितने भी एलाइज हैं यूएसए के उन सब ने जो है इनको प्रेशराइज किया है और इनको कहा है कि आप अपनी, बाइडन साहब को कहा है कि आपकी जो अगस्त 31st की जो डेडलाइन है अफगानिस्तान से निकलने की, उसको आपको हटाना पड़ेगा. क्योंकि बाइडन साहब ने थोड़े दिन पहले, अभी एक दिन पहले ही शायद, अपनी स्पीच की थी और उन्होंने कहा था कि जो इवैक्यूएशन अफगानिस्तान से आएगा वो बहुत ही हार्ड और पेनफुल होएगा. मुझे पता है कि उसमें बहुत सारी लोगों को तकलीफ है और जो तालिबान है वो जो है ऐसे बढ़ते चले जा रहे हैं यहां पे और ये और वो, और अभी हमारे वहां पे जो है बहुत सारे लोग हैं जिनको हमने इवैक्यूएट करना है. तो अब वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है कि अंदर से जो एलाइज हैं सारे वो कॉन्स्टेंटली इनको कह रहे हैं कि अभी आप एक्सटेंड करें. अच्छा, अब जबकि ये खबरें आना शुरू हुई हैं कि एलाइज उनको फोन कर रहे हैं और इनको कह रहे हैं कि आप अपना करें, तालिबान के जो स्पोक्स पर्सन है सुहेल शाहीन साहब, उन्होंने आज उसको स्काई न्यूज को एक इंटरव्यू दिया है. और इनका शाहीन सुहेल साहब का ये जो स्काई न्यूज का इंटरव्यू था, इसके अंदर उन्होंने कहा है कि अगर आप अपना एक्सटेंड करना चाह रहे हैं स्टे, तो हमारा तालिबान का आंसर टू यूएसए इज नो, क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे. खबरदार आपने ज्यादा जो है एक्सटेंड करने की कोशिश की. तो उनसे क्वेश्चन वहां पे किया गया कि तो आप अपनी गवर्नमेंट का मेकअप क्यों नहीं बता रहे हैं. वो कह रहे हैं जी हम बिल्कुल मेकअप अपनी गवर्नमेंट का उस वक्त तक नहीं बताएं कि जिस वक्त तक एक भी नेटो का सोल्जर या एक भी यूएस सोल्जर जो है हमारी सॉइल के ऊपर है. ये सारे के सारे निकलेंगे, फिर हम बैठेंगे, फिर हम सोचेंगे हमको कैसा गवर्नमेंट चाहिए और कैसे लोग चाहिए, लेकिन इनकी प्रेजेंस में हम कुछ भी बिल्कुल नहीं करेंगे. तो इसलिए हम यूएसए को बड़ा वार्न करना चाहते हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेज बड़े खतरनाक हो सकते हैं. बिल्कुल आपको एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है और किसी के प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है. आपने जो डेट अब कही है उसमें से यहां से हमारे मुल्क से जो है वो निकलो. चाइनीज स्पेशल एनवॉय फॉर अफगान अफेयर्स जो है यू जियोंग, उन्होंने आज पाकिस्तान के अंदर वो थे और उनको एक इंटरव्यू दे रहे थे, और यानी पता नहीं पाकिस्तान में थे कि नहीं, पर एक वर्चुअल वो इंटरव्यू दे रहे थे पाकिस्तान के जो कुछ मीडिया हाउसेज हैं उनको. तो उन्होंने कहा जी कि जो सारा मेस क्रिएट हुआ है अफगानिस्तान में और जो अनसर्टेनिटी है उसकी रिस्पांसिबिलिटी सिर्फ एक ही कौम के ऊपर है और वो यूएसए है. यूएसए दूसरी दूसरी कौमों के ऊपर ये डाल रहा है रिस्पांसिबिलिटी, किसी का इसमें कसूर नहीं है, ये इनका है. वो कहते हैं जी अब आपको समझ में आया कि क्यों चाइना की पॉलिसी नॉन इंटरफेरेंस की है. अब इनको यूएसए को भी रियलाइज करना चाहिए कि मिलिट्री एक्शन, इंटरफेरेंस दूसरों के मुल्कों में कितनी भारी पड़ सकती है. इन्होंने बिना वजह का इंटरफेयर किया, उसके बाद अब अचानक से विड्रॉ कर रहे हैं, मेस क्रिएट करके, जो कि इनकी आदत है, वो हमेशा जहां जाते हैं करते हैं, इधर भी करके वो आ रहे हैं. वो कह रहे हैं इनको पता होना चाहिए कि यहां पे डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स हैं, उन एथनिक ग्रुप्स को एक अमेरिकन मिलिट्री का बंदा जो है वो, या अमेरिकन जो लीडर है वो इनको यूनाइट नहीं कर सकता. इनको वही लोग यूनाइट कर सकते हैं जो जमीन से हैं, जैसे कि तालिबान. तो ये जब वहां से निकलेंगे तो तालिबान इन एथनिक ग्रुप्स को यूनाइट करेंगे, और उनको करना भी चाहिए. वो कहते हैं मैं होप करता हूं कि वो शायद करेंगे और फिर इनको जो है अपना एक ये रास्ता बनाएंगे. और वो कहते हैं मुझे लगता है कि ये तालिबान जो है मे बी दे आर डिफरेंट, और ये जो इनको बार बार टेररिस्ट ग्रुप कहा जा रहा है, ये शायद अपना ये इमेज भी जो है खत्म करने की कोशिश करेंगे. तो ये उस जो चेन है उसको ब्रेक करके और लार्जर जो सिक्योरिटी जो रीजन की है और नेबर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात जो है उनके ऊपर जो है ये ज्यादा गौर करेंगे. काबुल के अंदर आज सुबह जो काबुल एयरपोर्ट है उसके ऊपर कुछ झड़पें वहां पे हुई थी, और उसके अंदर जो है एक अफगान जो सोल्जर है उसकी डेथ हो गई है. और ये उस वक्त हुआ है जैसे कि जनरल साहब ये भी कह रहे थे कि वो जो पंजशीर का एक इलाका है वो सिर्फ एक उनके कंट्रोल से बाहर रह गया अफगानिस्तान के, सॉरी तालिबान के. तो उसके ऊपर और कुछ और इलाकों के ऊपर ये वीकेंड के ऊपर ऐसे कुछ इत्तलाएं आई थी कि दूसरे जो ग्रुप्स हैं उन्होंने कब्जा कर लिया. तो जो तालिबान है उन्होंने इन सबको फिर पीछे पुश जब किया और इनको जो है अपनी वो एक तो वो तीनों इलाके भी इन्होंने वापस ले लिए हैं वैसे, तो उस जगह के ऊपर फिर जो है इनकी जो वो थोड़ी सी रेजिस्टेंस शो की गई उसमें जो है वो एक बंदा मरा है. अब जो वेस्टर्न मीडिया है वो ये चीजें नहीं बता रहा कि हकीकत क्या है. वो बस ये बताते हैं ओ जी उस पर अफगानिस्तान के एयरपोर्ट के ऊपर जो है 7 बंदे मर गए, ओ जी आज जो है झड़पें हुई उसमें एक बंदा मर गया. बैकग्राउंड नहीं बता रहे हैं कि बैकग्राउंड क्या है कि लोग जो है तैयारों से लटके हैं, गिरे हैं तो मरे हैं, राइट. फिर जी इन्होंने जी वो गोलियां चलाई हैं लोगों के ऊपर. अच्छा जी लोग गोलियां क्यों चलाई हैं, आपको पता है क्यों चलाई हैं तालिबान ने, कि तालिबान कह रहा है कि अफगानिस्तान का एक झंडा होना चाहिए, वहां पे हर एथनिक ग्रुप ने एक झंडा बनाया हुआ है. वो कहते हैं कि नहीं इन झंडों को ना करें, एक यूनिटी की बात करें. उन्होंने नहीं की, वो सारे वो दूसरे डिफरेंट किस्म के फ्लैग्स लेके निकल गए उनके ऊपर. तो मतलब बैकग्राउंड नहीं बता रहा है वेस्टर्न मीडिया क्योंकि उसका इंटरेस्ट ही नहीं है ना. वो बस ये लेबल करना चाहते हैं कि जी तालिबान जो है वो एक टेररिस्ट ग्रुप है और ये लोगों के ऊपर कॉन्स्टेंटली, हालांकि कह रहा है कि हमको ये सब नहीं करना, लेकिन फिर भी आप देख लो हर वक्त जो है ये लोगों के ऊपर गोलियां बरसा रहा है. तो ये आज का भी वाकया जो है वैसा ही है। यूएस सोल्जर्स जो हैं जी वहां पे जो स्टेशन है हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट काबुल के अंदर, वो अब वहां पे जो बेचारे लोग बैठे हुए हैं इवैक्यूएशन के लिए अफगान जैसे भी हैं जो भी हैं, है तो मुसलमान नमाजद भाई, और इतने पढ़े लिखे भी हर कोई नहीं है। अच्छा वहां पे उनको जो है अपने तरफ से अमरीका बड़ी उनको अच्छे दिल दिखा रहा है और उनको
वैसे मैं एक बात बताऊं वैसे
जी जी
जो लास्ट 2-3 डेज में हमने जो पिक्चर्स एंड वीडियोस वगैरह देखी ना एयरपोर्ट की और एयरपोर्ट के अंदर की और जहाज के अंदर की और जिस तरीके से वो ये सोल्जर्स जो है, सोल्जर्स नॉर्मली हम समझते हैं कि बड़े खूंखार सोल्जर्स होते हैं, मगर जिस तरीके से उन्होंने बच्चों को उठाया हुआ है और जिस तरीके से इन्होंने बड़े बूढ़ों को हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं, उठा उठा के अंदर रख रहे हैं और जिस तरीके से,
लेकिन ये पिक्चर वो नहीं दिखा रहे ना,
दिस इज अमेजिंग टू सी अमेरिकन सोल्जर्स आर डूइंग सो ह्यूमन की चीज जो कर रहे हैं ना, इंसानियत इंसानियत को दिखाने के लिए, तो ये वाकई में वो
लेकिन ये पिक्चर नहीं दिखा रहे ना मीडिया, ये जो अभी मैं आपको खबर सुनाने लगी हूँ ना माजिद भाई, ये सब ड्रामा तो चल रहा है राइट, ये तो उठा उठा के उनको उसमें डालना करना। वहां पे जो कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये जो अफगानिस्तान के एयरपोर्ट पे जो लोग बैठे हैं हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, वो सारे पढ़े लिखे भी नहीं है और अपनी तरफ से, वही मैं आपकी बात कर रही थी कि अमेरिकन अपनी तरफ से बड़ा ह्यूमैनिटेरियन फेस दिखा रहे हैं, उनको जो खाना दे रहे हैं ना माजिद भाई, उस खाने के अंदर पोर्क है और उन, ये देखें उन पैकेट्स के ऊपर लिखा हुआ है पोर्क सॉसेज पैटी। अब हर कोई जो अफगान है वो इसको पढ़ नहीं सक रहा है। सोशल मीडिया के ऊपर आज कुछ जो है तस्वीरें डाली गई थी और ये रिपोर्ट जो है मीडिया ने भी की है कि ये जो इनको 95% लोगों को तो समझ ही नहीं है बेचारे, ऑलरेडी वो पत्थरों के ऊपर लेटे हुए हैं और ऑलरेडी वो जमीनों पर लेटे हुए हैं, उनको जो भी मिल रहा है वो खा रहे हैं। कुछ लोग जो पढ़े लिखे हैं उन्होंने ये इस चीज को पकड़ लिया है, उन्होंने कहा है कि भाई इस्लाम फॉरबिड करता है और इनको पता है कब कितने अरसे से ये लोग अफगानिस्तान में, दे डोंट अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, ये कल्चरल सेंसिटिविटीज हैं और ये जो है इन्होंने ये हमको इस तरह का खाना दे रहे हैं तो ये इसके अंदर पोर्क है, हम कैसे खाएंगे। अब जिसको तो पता नहीं है बेचारा, जो जाहिल है, जो पढ़ा नहीं जा रहा है,
मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मगर जो ऑर्डिनरी सोल्जर्स और मरीन्स जो है ना उनका इससे कुछ ताल्लुक नहीं है,
लेकिन वो कह रहे हैं कि ये सोल्जर्स हमें खाने दे रहे हैं।
हाँ, मगर अथॉरिटीज जो है ना उनको चाहिए था, वो मेजोरिटी ऑफ द सोल्जर्स जो है ना उनको ये डीप इनसाइट की बात नहीं पता कि वो पोर्ट क्या है और मुसलमान क्या है और ये क्या है वो क्या है, वो जो आके वो जो बाकी में जो ह्यूमैनिटेरियन दिखा रहे हैं वो जो कर रहे हैं दैट इज शाबाशी के काबिल।
बस मजे था, वो तो वो ड्रामा हमेशा ही, आपको पता है ना अमेरिका का जरा थोड़ा ड्रामा ज्यादा ही होता है, वो दिखाना तो है ना उन्होंने। अच्छा जी, पंचेर वैली की जिसकी हम बात कर रहे हैं, वहां पे जनाब अब रेजिस्टेंस क्यों बनी हुई है, वहां पे जनाब रेजिस्टेंस इसलिए बनी हुई है कि दो बड़े मेन जो ताजिक लीडर्स हैं, अगेन ये जो सारा वेस्टर्न मीडिया दिखा रहे हैं ना कि जो है वो तालिबान बड़ी उधर खूनरेजी कर रहे हैं और मार रहे हैं, उसकी वजह ये है कि ये ताजिक हैं, ये अफगान भी नहीं है, ये दिस इज वन इज अहमद शाह मसूद एंड द अदर वन इज अमरुल्ला साले, दे आर सिटिंग इन पंचेर एंड दे आर टेलिंग पीपल कि हमने बेतहाशा असला जमा किया हुआ है, असले की कोई कमी नहीं है, फाइट करो, मारो, निकालो इन तालिबान को अपने मुल्क से, इनको निकालो, इनके हाथ में मुल्क नहीं देना, राइट। दैट इज वाई पंचेर जो कि हमेशा से आपको पता है कि फरवरी 2000 में भी ये ऐसे ही हुआ था कि ये पहली दफा जो है इन्होंने ये जब आए थे वाइस प्रेसिडेंट बनके तो उस वक्त भी इन्होंने एंटी तालिबान जो अलायंस थी नॉर्दर्न अलायंस उसका साथ दिया था इन्होंने और इन्होंने कहा था जी तालिबान को मार के यहां से निकालो। पंचेर के अंदर ये जो आप लड़ाई कॉन्स्टेंटली ये जो वेस्टर्न मीडिया दिखा रहा है कि बड़े ये जी जालिम है जाबर है और ये वैसे ही जंगली है और ये है, उसकी वजह ये है कि ये दो लोग जो अंदर बैठे हैं ये लोगों के फिर से सेंटीमेंट्स को उभार रहे हैं और वो कह रहे हैं जी कि तालिबान के अगेंस्ट आप लड़ें, तालिबान के अगेंस्ट लड़ें, इनको यहां से निकालें और जो है वो कहते हैं जी कि हम तो जो हैं हम बड़े अफगानिस्तान के वो हमें बड़ा प्यार है, आपको पता ही है कि हम जो थे बड़े सक्सेसफुल थे, हमने अपने इलाके जो है सोवियत यूनियन के जो है वो लड़ाई में हमने डिफेंड किए थे, ये है वो है, उसकी वजह से ये लड़ाइयां जो हैं तेज उधर हो गई हैं पंचेर के अंदर। तो ये दो लीडर जो हैं ये एज अ स्पॉइलर, भाई तुम लोग अफगान भी नहीं हो, तुम लोग क्यों बैठे हुए, तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है, तुम लोग ताजिक हो, निकल के जाओ अपने मुल्क में जाओ, ताजिकिस्तान में जाओ। तो नहीं जी, ये वहां पे बैठे हैं और वो ये कह रहे हैं। ये जनाब वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट आई है और उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि हम जो है बिल्कुल अलकायदा को शेल्टर नहीं करेंगे और हम जो है तालिबान कह रहे हैं कि हम अलकायदा को नहीं करेंगे और हम गवर्नमेंट इंक्लूसिव बनाएंगे, लेकिन जिस वक्त जो है ये जाएंगे सारे जो लीडर जो लोग हैं फॉरेन ट्रूप्स यहां से जाएंगे। जनरल साहब अभी जिसका जिसकी बात कर रहे थे, ये जो एक्स अफगान प्राइम मिनिस्टर थे और हिजबे इस्लामी के जो चीफ हैं, ये जो गुलबदीन हिकमत यार साहब जो हैं, उन्होंने भी आज एग्जैक्टली वही बात की। उन्होंने कहा जी हम इंडिया को बड़ा उसमें कहना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया की जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री थी उसका एक बयान आया था सामने, तो उन्होंने कहा जी हम बड़े कंसर्न हैं जो अफगानिस्तान में हो रहा है। तो उन्होंने कहा जी कि आप अफगानिस्तान के फ्यूचर के बारे में ज्यादा कंसर्न होने की जरूरत नहीं है, आपके अपने खुद के मुल्क में जो इश्यूज चल रहे हैं आप उनके ऊपर ध्यान दें। उन्होंने कहा कि हमें पता है कि आप जो है क्यों इस तरह के बयान देते हैं, वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान जो है वो कश्मीर पर बोलता है, तो चूंकि वो कश्मीर पे बोलते हैं तो पाकिस्तान से रिवेंज लेने के लिए आप जो हैं वो कहते हैं जी कि वो अफगानिस्तान के अंदर बड़ा पाकिस्तान स्पॉइलर प्ले कर रहा है और बड़े वहां के हालात खराब हैं और ये है वो। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के साथ हमेशा हमारी बात चलती रहेगी, अफगानिस्तान के साथ हमेशा सॉरी पाकिस्तान के साथ हमेशा बैठेंगे, पाकिस्तान के साथ बात करेंगे, अपने मुल्क के मामला हम खुद चलाएंगे। इसके अलावा आज उन्होंने बहुत तारीफ की उसकी इमरान खान की, उसने कहा इसने हमेशा कहा है कि रीजन के अंदर जो है पीस आना चाहिए और ये लड़ाई मारकुटाई से जो है कुछ भी हासिल नहीं होएगा। तो ये आज का इनका जनाब बड़ा वो एक आया है। इंडिया के फॉर्मर आईएएफ के चीफ हैं अरूप राहा, उन्होंने आज आईएएफ यानी के जो है इंडियन एयरफोर्स जो हैं उनके एक्स चीफ हैं अरूप राहा, पीटीआई की ये न्यूज है, और इसमें उन्होंने कहा है जी कि मैं बहुत ज्यादा वार्न करता हूं इंडिया को के बूट्स ऑन ग्राउंड आप ना करें अफगानिस्तान के अंदर, आपको इस वक्त लग रहा है कि जी हम पीछे रह गए हैं और चाइना पाकिस्तान और रशिया जो हैं वो बड़े आगे आगे बढ़ के इनके साथ दोस्तियां कर रहे हैं, वो कहते हैं जी कि ये थोड़े ही दिनों में दे विल कट अ सॉरी फिगर और चाइना और पाकिस्तान विल बर्न देयर फिंगर्स इन अफगानिस्तान, दे ऑलरेडी हैव बट दे हैव पाकिस्तान हैज बट इट हैज नॉट लर्न द लेसन, अब ये बाकी के भी जो है सफर करेंगे। तो इंडिया इस सारे हंगामे और इस ट्रबल से और मिलिट्री इंटरवेंशन दूर रहे और यह काम ना करें, तो आप जो हैं उसके अंदर ना वो करें। तो वो कहते हैं कि ये जो सारी पार्टीज जो हैं इस वक्त अफगानिस्तान कर रही हैं, चाइना पाकिस्तान और रशिया, ये जो हैं ये इनके खुद के जो हैं ये डिसऑनेस्ट इनके पर्पसेस हैं जो कि वो उनके मोटिवेशन हैं जो ये पूरा करना चाहते हैं अफगानिस्तान में, तो इंडिया को ये बातें समझनी चाहिए, तो आप इससे दूर रहें। इंडियन एक्सप्रेस की आज एक न्यूज है और इसके मुताबिक जनाब जो पीडीपी की प्रेसिडेंट हैं महमूदा मुफ्ती साहिबा, आज उन्होंने जो कि कभी अलायंस में होती थी बीजेपी की गवर्नमेंट के साथ, उन्होंने आज बहुत वार्न किया है बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट को। उन्होंने कहा जी कि आपको अगर अभी तक भी समझ नहीं आई है कि रीजन जो है वो कैसे चेंज हो रहा है तो फिर आपको कभी भी नहीं आएगी। अपने नेबरहुड में देखो कि कितनी बड़ी सुपर पावर थी यूएसए और यूएसए को कैसे मार के भगाया है अफगानियों ने, आपको भी मार के भगा सकता है, यहां भगाया जा सकता है कश्मीर से। उन्होंने कहा जी टॉलरेंस की एक हद होती है, महमूदा मुफ्ती साहबा कहती हैं, वो कहते हैं तुम इस वक्त जो है बीजेपी की गवर्नमेंट हमारी टॉलरेंस को टेस्ट कर रहे हो, ये याद रखना कि जिस दिन हमारी पेशेंस और टॉलरेंस खत्म हो गई तो तुम भी नहीं रहोगे, तुम डिसअपियर हो जाओगे। तो इसलिए जो कश्मीरी हैं उनकी टॉलरेंस को टेस्ट मत करो। और उन्होंने कहा जी कि ये जो आपका माइंडसेट जो है अटल बिहारी वाजपेयी की तरह का होना चाहिए, जो कि कहते थे कश्मीरियों के साथ बैठो, उनके साथ बात करो, उनके मसले हल करो, तो अगर आपका माइंडसेट ऐसा नहीं होएगा तो आप जो है सफर करेंगे। आज ये एड्रेस कर रही थी अपने पार्टी वर्कर्स को कुलगाम का जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की दूसरी एक रिपोर्ट है जी, दिस आई मीन यू नो दिस इज पीटीआई, तो पीटीआई की रिपोर्ट है जिसमें के कहा गया है कि आसाम के इलाके में काफी सारी अब जो हैं अरेस्ट हो रही हैं, तकरीबन 15 के करीब लोगों को पकड़ा गया है इंक्लूडिंग आसाम के एक पुलिस कांस्टेबल सीनियर लीडर ऑफ द स्टेट, इनका जो ताल्लुक है जमीयत उलमाए हिंद के साथ है, कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, कुछ जर्नलिस्ट हैं, क्योंकि इन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे तालिबान का साथ दिया था, उन्होंने कहा था तालिबान जो अफगानिस्तान में कर रहा है वो ठीक कर रहा है, तो उसके ऊपर इनको जी पकड़ा गया है। पाकिस्तान के अंदर जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं शेख रशीद अहमद साहब, उन्होंने कहा जी कि हमारी बातचीत हुई है तालिबान के साथ और हमने उनको कहा कि टीटीपी जो है तरीके तालिबान पाकिस्तान वो हमारे मुल्क में आके बहुत खराबी पैदा करता है, तो आप इसको थोड़ा सा करने की कोशिश करें, खासतौर पर आपने जो ये मौलवी फकीर मोहम्मद जैसे लोग रिलीज करती हैं इनके ऊपर जरा थोड़ी सी सख्ती करो, इनको पकड़ो। तो उन्होंने कहा जी कि हम बिल्कुल इनका आपके अब खिलाफ यूज नहीं होने देंगे। और इसके अलावा जी शेख रशीद अहमद साहब ने कहा कि पाकिस्तान ना सिर्फ अपने जो सिटीजन्स हैं उनको काबुल से निकाल रहा है, बल्कि बाकी बहुत सारे जो दूसरे मुल्कों के सिटीजन हैं इंक्लूडिंग यूएस सिटीजन उनको इवैक्यूएट कर रहा है काबुल के साथ, जो कि पाकिस्तान को कोई करने की जरूरत नहीं थी, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, अपने बस बंदे उठाता और वो ले आता, लेकिन वो सबकी हेल्प कर रहे हैं पीआईए वाले जो है, हम जो है हर किसी को वीजे दे रहे हैं, हमारी एम्बेसी और हम किसी को कर रहे हैं। मरियम औरंगजेब जो कि पीएमएलएन की स्पोक्स पर्सन है जी, उन्होंने कहा है जी कि इमरान खान की नाक के नीचे करप्शन हो रही है और वो उस करप्शन को बिल्कुल रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इन्होंने ये जो ईवीएम मशीन्स भी बनाई हैं इसीलिए बनाई हैं कि इलेक्शन के अंदर रिगिंग की जा सके, यानी मशीन के अंदर आप उंगली डाल के उसको बताएंगे अच्छा। भाई तुमने यहां इस इलाके में तुमने जो है वो करनी है, ठीक है जी, क्योंकि आप तो माजी भाई आपको ये पता ही है ना, कंप्यूटर को आप बता सकते हैं कि इस इलाके में तुमने जो इस कमरे में तुमने जो है वो बेईमानी दिखानी है ना, आप बता सकते हैं। तो अब ये ईवीएम मशीन्स जो हैं ये भी वो कह रहे हैं जी इलेक्शन रिगिंग के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं, और ये जो इन्होंने अनाउंस किया है फवाद चौधरी साहब ने, मिनिस्टर फॉर इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये जो पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी इन्होंने बनाई है इसको भी जो है इलेक्शन रिगिंग के लिए खर्च इस्तेमाल किया जाएगा। तो आज मरियम औरंगजेब ने कहा है कि इमरान खान से बड़ा डिक्टेटर हमने देखा नहीं है, जिसने के कानून की धज्जियां उड़ा दी हैं, और जो है ये हम लूट मार यहां पे होने नहीं देंगे अंडर इमरान खान गवर्नमेंट। फेडरल मिनिस्टर फॉर इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग फवाद चौधरी साहब ने आज कहा है कि ये जो हमने पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई है उसकी वजह यह है कि इसमें एक हम जो है सारा ये जो मीडिया है इसको अंडर एक लॉ लेके आ रहे हैं हम, विच इज पीएमडीए। वो कहते हैं जी कि ये जो डिजिटल मीडिया है ये जब से बना है ये 7 लॉज के अंदर है पाकिस्तान में, जो सोशल मीडिया है वो पीटीए के अंदर है, न्यूज और ये जो है प्रेस काउंसिल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक वो पैमरा के अंडर है, लेबर रेगुलेशंस जो है वो इंप्लीमेंटेशन ट्रिब्यूनल के अंडर है, ऑडिट ब्यूरो जो है वो सर्कुलेशन डील्स के अंडर है। तो वो कहते हैं भाई ये क्या मजाक है, तो अब हमने ये जो पीएमडीए बनाई है तो इसके अंडर जो है ये पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ये सब जो है इनके अंदर जो है ऑपरेट करेंगे, अंडर इनके करेंगे, और इसमें जो है वो कर सकते हैं टीवी चैनल्स को अगर वो कोई गलत खबर जो है वो छापते हैं या सुनाते हैं तो उसके लिए उनको काफी हैवीली फाइन, 250 मिलियन रुपीज तक का भी फाइन किया जा सकता है। अच्छी खबर पाकिस्तान के लिए ये है कि एक बच्चा है 15 साल का माजिद भाई, सैयद इमाद अली, उसने वर्ल्ड इंग्लिश स्क्रैबल प्लेयर्स एसोसिएशन यूथ चैंपियनशिप जो है वो जीती है, और कराची में हुआ था ये मुकाबला और इसके अंदर इन्होंने विन किया। इन्होंने इससे पहले 2018 में भी ये चैंपियनशिप दुबई में की थी, एंड ही इज वन ऑफ द यंगेस्ट टू विन दिस टाइटल बैक टू बैक। हाँ जी माशाल्लाह, अच्छी न्यूज पाकिस्तान से। नुमान एजाज साहब जो हैं उन्होंने कहा है जी कि आतिफ असलम साहब अब अपना टीवी डेब्यू कर रहे हैं और वो नजर आएंगे अब सैफी हसन की जो नई वो टीवी सीरियल बन रही है संगे माह, उसके अंदर जी ये नजर आएंगे। ये सीक्वल है 2016 की सीरियल संगे मरमर का, तो इसके अंदर बाकी के लोग जो हैं सानिया सईद, समिया मुमताज, कुबरा, हानिया आमिर, ये लोग भी होंगे। अक्षय कुमार साहब के साथ जी बड़ा अजीब एक वाकया हुआ कपिल शर्मा शो में, कपिल शर्मा शो में वो आए और फैंस उनसे बात कर रहे थे कि अचानक एक लड़की जो है वो खड़ी हुई जिसको कि कहा गया कि आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं अक्षय कुमार साहब से, उसने कहा अक्षय कुमार साहब ठीक है आप बहुत बड़े स्टार हैं पर मेरा फेवरेट स्टार शाहरुख खान है, आप प्लीज उसको फोन करके मेरे से बात करवा सकते हैं। और ऐसी अक्षय कुमार ने काफी कोशिश की लेकिन वो फोन मिला नहीं, तो जो है बहरहाल वो तो जो फिर कपिल शर्मा ने जोर किया, उसने कहा आपको क्या लगता है, वो कहने लगी दूसरे फोन से करें, अब आप दूसरे फोन से करें आप इससे, तो उसने कहा तुम्हें क्या लगता है भाई वो शाहरुख खान किसी पीसीओ में काम वाम करते हैं। तो ये दिस वाज वेरी जो है फनी,
बट क्रेडिट गोज टू हिम दैट ही ट्राई टू कॉल हिम,
कॉल हिम हाँ, क्योंकि शो उसका था, लोग तो जो थे उसके फैन थे भाई, आपने जो आया होता है स्टार उसकी आपने बात करनी होती है, वो कहती है नहीं मेरा फेवरेट जो है शाहरुख खान है उससे मेरी तुम बात कराओ। Anyways, he tried. पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो 3 मैच ओडीआई सीरीज श्रीलंका में होने वाली थी बिकॉज वहां पे लॉकडाउन्स अब चल रहे हैं, तो अब ये पाकिस्तान में जो है होगी तो सितंबर के फर्स्ट वीक में, एंड फवाद आलम साहब जो हैं उन्होंने कहा है जी कि ये जो मैंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 100 रन बनाए हैं इसकी प्रिडिक्शन मेरी मां ने पहले ही कर दी थी, इसने मेरी मां से जब बात हुई तो उसने कहा कि तुम जो है वो बनाओगे 100 रन बनाओगे, और मेरे बाप ने मुझे कहा था यू हैव टू कीप गोइंग अगेंस्ट ऑल ऑड्स। एंड एब्सोल्यूटली जनाब, आवर लास्ट न्यूज सरफराज नवाज साहब ने जी एक लेटर लिखा है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को, उन्होंने कहा है कि आपके पास ये आएगी खबर कि पीसीबी का चेयरमैन जो है आप, क्योंकि वो मानी साहब को निकालने की खबरें आ रही हैं तो उसको निकालेंगे, तो आपके पास शायद रिकमेंडेशन रमीज राजा की आएगी, रमीज राजा को ना बनाना, वो बड़ा एंटी पाकिस्तान है, वो हमेशा जो है आईसीसी की जो है वो कहता है कि सुप्रीमेसी में इंडिया का हाथ ऊपर होना चाहिए और इंडिया को बड़ा फेवर करता है, तो आप जो है प्लीज कंसिडर करें एहसान मानी जैसे ही लीव करते हैं, या तो ज़हीर अब्बास को या माजिद खान को, इसको ना करें, रमीज राजा को ना करें।
There you go. ये थी आज की हमारी खबरें और बाकी की खबरें इंशाल्लाह ताला अब से लेके कल 6:45 तक जितनी भी खबरें आएंगी तमाम की तमाम खबरें आपको हम आगाह करेंगे कल 6:45। अभी जान नहीं आपने कही क्योंकि हमने शाहजी को छोड़ना नहीं है, शाहजी यही बैठी रहेंगी और आमिर यहाँ आ जाएंगे, मैं निकलूंगा यहाँ से और आमिर मेरी सीट पे आ जाएंगे, बस इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा। 8:15 तक आपने हमारे साथ रहना है। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह ताला, एंड कुछ स्पॉन्सर्स के पैगाम, वील बी राइट बैक।
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
क्या आपकी उम्र 50 साल से ज्यादा है? अगर हाँ तो ये वक्त है कि आप घर पर कोलोन कैंसर का टेस्ट लें, और ये टेस्ट बहुत आसान है। आप अपना सैंपल लेकर मेल के जरिए भेज दें, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि ये आपकी सोच से भी ज्यादा आसान है। आप फौरन अपने फैमिली डॉक्टर से किट हासिल करने के लिए रब्ता कीजिए और www.ontario.ca/colon-cancer-check पर जाकर मजीद मालूमात हासिल कीजिए। ऑन्टेरियो गवर्नमेंट की तरफ से अदायगी की गई, पेड फॉर बाय द गवर्नमेंट ऑफ ऑन्टेरियो।
बिकम ए मेडिकल डॉक्टर और डेंटल डॉक्टर इन 4 to 5 ईयर्स एट न्यूक्लियस यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन एंड न्यूक्लियस यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री अरूबा। 1 ईयर प्री मेड इन ब्रैम्पटन, 20 मार्क्स इन अरूबा एंड क्लिनिकल रोटेशन एट जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल्स इन बाल्टीमोर। क्लासेस स्टार्टिंग ऑन 13th September 2021. 10% कंसेशन, स्पेशल कंसेशन फॉर दो स्टूडेंट्स हु विल जॉइन इन दिस मंथ। फॉर अपॉइंटमेंट प्लीज कॉल 416-910-8750। आवर वेबसाइट इज nusom.org।
ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो मैनुअल जां ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो, ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब। लो जी तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नैपनी। आहो जी, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नैपनी। क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप, 519-622-0660 या quicktrucklube.com। QTL, बिकॉज वी केयर।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ? ਜੇਕਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈ। ਸਿੰਪਲੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ੁਲਕ ਤੋਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਿੱਸੇ ਦੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀ ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ $50 ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਦੇ ਕਸਟਮਰ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ www.simply.com/isbo, that's www.simply.com/isbo।
पूरे ऑन्टेरियो में लाखों लोग अपनी COVID-19 की वैक्सीन हासिल कर चुके हैं। हेल्थ कनाडा की मंजूर शुदा वैक्सीन अस्पतालों, डॉक्टर्स के दफातर, फार्मेसीज और अवामी वैक्सीनेशन के मुकाम पर दस्तियाब हैं। अपना किरदार अदा करें, अपनी वैक्सीन हासिल करें। 300 जुबानों में मदद के लिए ontario.ca/bookvaccine पर जाएं या 1-888-999-6488 पर कॉल करें। हुकूमत ऑन्टेरियो की तरफ से अदायगी की गई।
For fast, affordable, reliable and unlimited internet is starting from $39.99 for your business or home. Contact gorogue.ca at gorogue.ca. Prices are guaranteed for life with no annual contract. Plus, get unlimited bandwidth and pay no modem rental fees. Fast, worry-free internet and saving for life are just click away. Visit gorogue.ca. That's gorogue.ca. Or call 647-273-3291 to place your order today.
ਡਾਈਵੋਰਸ ਜਾਂ ਕਸਟਡੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿਸ ਕੋਲ ਜਾਏਗੀ, ਕਸਟਡੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਦੌਲਤ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਕੋਲ ਰਹਿਣਗੇ।
S&S Lawyers ਕੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਕਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ S&S Lawyers ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-655-2000।
ਕੋਵਿਡ 19 ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਰੋਸਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਗਈ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਗਈ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ। ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਰਿਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਢੀ ਫਰਨੀਚਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਫਰਨੀਚਰ ਸੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ।
ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੋਰ ਵੀ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬ੍ਰਹਮਟਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫਰਨੀਚਰ ਸਟੋਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੋਢੀ ਫਰਨੀਚਰ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ sodhifurniture.com ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ। ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੇਮ ਫਰਨੀਚਰ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਸੇਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਾਰ ਮੋਰ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਾਲ 9058747171।
Asian Food Center 9057931338। आपके किचन की तमाम जरूरियात एक ही छत तले। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ग्रोसरीज एंड स्टेबल्स, ब्रेड, डेयरी एंड एग, बेवरेज एंड कन्फेक्शनरी, ब्रांडेड फूड्स, पर्सनल केयर एंड हाउसहोल्ड, स्वीट्स एंड समोसास। Order now for in-store free pickup 9057931338. Home delivery is also available. Asian Food Center 9057931338. Asian Food Center.
क्या आपकी पॉलिसी इस पेंडेमिक में आपको कवर कर रही है? मालूम कीजिए मुझसे कॉन्टेक्ट करके। मैं हूँ फजल वदूद, इंश्योर प्रो फाइनेंशियल सर्विसेज से। मेरा नंबर है 9056075000। 27 साल का इंश्योरेंस और अंडरराइटिंग का मेरा एक्सपीरियंस है। मैं मेक श्योर करूँगा कि आपको एक ऐसा प्लान दिलवाया जाए जो कि बेहतरीन हो और गारंटेड लोएस्ट रेट पे हो। कॉल कीजिए 9056075000। और हाँ, हर जुमेरात शाम को चैनल 770 पे मेरा प्रोग्राम सुनना ना भूलिएगा, जिसमें हम आपसे शेयर करते हैं बेहतरीन टिप्स इंश्योरेंस के बारे में।
क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे तालीम के मैदान में सबसे आगे हों? तो उसे आज ही इंटरनेशनल स्कूल ऑफ कैम्ब्रिज में रजिस्टर करवाएं, जिसे फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने टॉप पब्लिक साउथ वेस्टर्न ओंटारियो का स्कूल करार दिया है। स्टेट ऑफ द आर्ट एजुकेशन, टेक्नोलॉजी एंड न्यू स्कूल बिल्डिंग एंड अ ब्रांड न्यू ग्रैंड जिम। मजीद मालूम के लिए कॉल करें 519-740-6855।
समर एन आजादी मेला बरोस हफ्ता अगस्त 28 सुबह 11 से रात 10 बजे तक स्वागत बैंकेट हॉल 6991 मिल क्रिक ड्राइव मिसिसागा में। फ्लैग होस्टिंग, मिली नग में फेस पेंटिंग, शॉपिंग स्टॉल, फूड कोर्ट।